क्या नमोकार इस तरह हमारी पांचों इंद्रियों को दिशा दे सकता है? देता ही है, अगर जो व्यक्ति लेने की कोशिश करे उसे दिशा देता ही है। मंत्र, सुमरन, तल्लीनता और धुन, इन तीनों पर सदा हुआ है। क्या कभी सुमरन किया मंत्र का? एक गहरी स्मृति, मंत्र की बहुत गहरी स्मृति का नाम सुमरन है। मैं आता हूं, जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, जागता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, जो भी करता हूं, मेरे मन से नमोकार नहीं जाता। ये सुमरन, एक गहरी स्मृति, भुलाया नहीं जाता। हमें आपको बहुत याद करना पड़ा, इसका मतलब आपने भुला दिया था, तब तो आपको अलग से याद करना पड़ा। हम भुला ही नहीं पाए, इसलिए हमें कहने नहीं पड़ता कि मुझे याद करना पड़ता है नमोकार, मेरे से भूलते ही नहीं है नमोकार। इतना गहरा सुमरण है, सोते समय भी नमोकार भूलता नहीं है। अगर हम आचार्य भगवंतों की इस वाणी को आज की भाषा में चेंज कर लें, सुमरण कह रहे हैं और धबला में वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं कि भोयन सोयन पयान पच्चयान, चाहे जिस स्थिति में हो, खाते पीते आते जाते सोते उठते बैठते जागते, जो व्यक्ति पंच नमस्कार का स्मरण करता है वो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता है और संसार से पार होने की प्रक्रिया को अपना लेता है। ये सुमरण निरंतर बना रहे, इतना ही पर्याप्त है। इस नमोकार मंत्र के साथ मैं सिर्फ नमोकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले कह दिया है कि हम जिस मंत्र के साथ हमारा सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन है उस मंत्र की बात करेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है एक और मंत्र फेमस है, ओम भुवर भू स्वाहा सवितुर्वरेण्यः भर्गो देवश धीमहि यो ना प्रचोदयात्। बे भगवान ऋषभदेव जो युग के आदि में भुवर भू स्वाहा ऊर्ध मध्य अधोलोक इन सब के स्वामी होकर, सवितुः वरेण्यः सूर्य के समान श्रेष्ठ होकर, हमारे मोक्ष मार्ग में हमारी बुद्धि को प्रवर्त करने के लिए उत्पन्न हुए थे, उन्हें प्रणाम करता हूं। अगर ऐसे गायत्री मंत्र का भी आप किसी से सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन हो तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं। मंत्र आपका जिससे आपकी आत्मीयता हो वो आवश्यक है। नमोकार महामंत्र का सुमरण अगर आप निरंतर करते हैं तो पहली चीज कि आप उसको अपने जीवन में पूरी तरह जज्ब कर लें, और उसके बाद फिर आपकी एकाग्रता और तल्लीनता बहुत आवश्यक है, और वो सद ही जाती है। जिस व्यक्ति के भीतर जितने गहरे में मंत्र उतर जाता है, शब्दों तक सीमित नहीं रहता है, जो भीतर उतर जाता है, एक बार जोर से शब्द का उच्चारण करें नमोकार का, उसके बाद उस ध्वनि को वहीं रहने दें और सिर्फ होठों में उस मंत्र को उच्चारण करें। वो अब होठों में आ गई है वो ध्वनि, और उसे होठों से भी भीतर मन में भेज दें। रोज अगर ऐसी प्रक्रिया करें, जोर से बोलें, होठों में समाएं और भीतर डाल दें, आप पाएंगे कि इस तरह अनकॉन्सियस में वो मंत्र निरंतर गिरता चला जा रहा है। और जैसे ही मंत्र, कोई भी मंत्र, विशेष रूप से नमोकार मंत्र, अगर कभी एक बार अनकॉन्सियस में गिर गया तो मानिएगा फिर सुमरण शुरू होगा, और उसके बाद ही तल्लीनता आनी शुरू होगी। तल्लीनता के बारे में आपसे क्या कहूं? स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं तल्लीनता बता दीजिएगा, तल्लीनता पर आप कोई एक क्लास ले लीजिए। काश ऐसा हो सकता, काश कोई कंडीशनल मेडिटेशन हो सकता। मेडिटेशन जब भी होगा अनकंडीशनल होगा। आज जितने मेडिटेशंस हैं की प्रोसीजर्स हैं सब इतनी कंडीशनड हो गई हैं, हमको एक व्यवस्थित कमरा चाहिए, डनलप का गद्दा चाहिए, फिर लाइटिंग चाहिए, कोई साउंड चाहिए, फिर कोई हमें बताने वाला चाहिए कि ऐसा ऐसा सोचो, तब हम ध्यान कर पाते हैं, तब हम मेडिटेट, तब हम तल्लीन हो पाते हैं। नमोकार निरंतर अगर हमारे भीतर बज रहा है तो वो हमें तल्लीनता देगा। छोटे से बेटे को देख लीजिएगा, जब वो रेत में अपना घर बनाता है, दुनिया में बन रहे होंगे बहुत सारे बम, और दुनिया में बढ़ रहे होंगे बहुत सारे तोड़ फोड़ के सामान, लेकिन वो बिल्कुल चिंतित नहीं है कि मेरा घर टूट जाएगा। वो तल्लीन है बनाने में, वो कंस्ट्रक्टिव है। मंत्र इसी तरह हमें तल्लीनता अनायास दे देता है।